गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। आरु वृक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ तस्व शम कारण मुच्यते का चिंतन करते करते हमने कल प्रातः काल आइंस्टाइन की बात पर विराम किया था। ये आइंस्टाइन को योगारूढ़ होना हो तो वासनाओं में उसको सम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं कि वासना क्या होती है। और कथा भी कही आपसे कि वो एक दिन अपने मित्र के यहां भोजन के लिए निमंत्रित हुए। भोजन पूरा हो गया 11 बजे तक, वरंडे में बैठ के दोनों बात कर रहे हैं और घड़ी भी देखते जा रहे हैं, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। अब वो बार बार घड़ी भी देखते हैं और मित्र को देखते हैं और मित्र भी देख रहा है क्या हो गया, इतने बड़े आदमी को कहा भी कैसे जाए। अंत में वो मित्र का धैर्य टूट गया। वो कहता है क्या आज आप सोइएगा नहीं, वो कब जाएंगे इसे नहीं पूछ सकते ना, क्या आज आप सोइएगा नहीं। अरे मैं भी ये सोच रहा हूं कि सोना तो चाहिए, पर आप जब जाओ तब तो मैं सोऊं। बोले मैं कहां जाऊं, ये तो मेरा घर है। ओ, ये आपका घर है, मुझे क्षमा करें, मैं तो ये भूल ही गया कि ये आपका घर है। अच्छा अच्छा मैं जाता हूं। ये घर किसका है, वो जिसको पता नहीं है, आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति, वो नहीं घड़ी में बज गया, वो स्वयं बह गया। उसके लिए क्या वासना है, उसके लिए क्या कामना है, कोई तृष्णा नहीं है, वो परे है इनसे, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। इच्छा होने पर वो शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध क्यों नहीं है, देह की शुद्ध नहीं है। सारी समस्या जो है वो कहते हैं कि पढ़ लेते हैं श्लोक को, चौथे श्लोक को एक बार चलिए। यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढ़ोच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढ़ोच्यते। आइंस्टाइन की बात को जब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनके जीवन में यही पता नहीं है कि मेरा घर है किसका घर है, तो वो देहातीत है, ये गुणातीत है, ये इंद्रियातीत है, वह कालातीत है। देखिए नहाने बैठे हैं टब में और टब के अंदर से वो जो बुदबुदें उठती हैं उनको देख करके सृष्टि के विस्तारक की कल्पना कर सकते हैं। ये भूल गए कि ये ऐसा होता है। आइंस्टाइन तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई मिलने के लिए आए तो आश्रम पूरा भरा पड़ा था, वो कोई कहीं पर भी रुकने के लिए, और हमारे अच्छे पुराने दोस्त रहे, महात्मा ही थे, उत्तरकाशी से आए, वृद्ध हैं, 85 साल की उम्र है, डायबिटीज भी कम नहीं है, 578 है। हाँ हमने कहा कि महाराज जी अभी हम कमरा ठीक करवाए देते हैं, अब हमारे ही स्नान घर में स्नान कर लो, तो स्नान कर रहे हैं। गंगा में नहाने की आदत है, बाबा जी को मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गंगा में नहाने की, वो तो फुहारा चालू कर दिया, नहा रहे। उनको ध्यान भी नहीं है कि क्या हो रहा है, तो धीरे 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 करके वो जो पानी है वो बाथरूम से बाहर आने लग गया। बाथरूम से बाहर आकर कमरे में आया, जब कमरा भर गया तो बाहर के बरंडे में आया, वो भर गया तो सीढ़ी में आ गया, सीढ़ी में आ गया तो नीचे तक आ गया। तो नीचे जो लोग बैठे थे, पानी कहाँ से आ रहा है? कोई अगर कमरा धोता है तो उनकी नालियां अलग है, तो वो देखने के लिए आए, सन जी आपके कमरे से पानी आ रहा है, आप तो दफ्तर में बैठे हो तो कमरे में कौन है? मैंने कहा एक संत है, नहाने दो, परवाह नहीं। तो देखो कैसी अवस्था है उनकी, उनकी अवस्था है देहातीत, उनको पता ही नहीं है कि ऊपर से पानी गिर रहा है कि मैं गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ। गंगा में डुबकी लगाए तो ऐसे ही होता है, बाबा लोग बैठे रहते गंगा में रहते। काशिक आनंद स्वामी जी है और हमारे कैलाश विद्यापीठ के स्वामी ब्रह्मलीन विद्यानंद गिरी जी महाराज, ये तमाम लोग हैं। जब हमारे कैलाश के शताब्दी समारोह हुआ तो ट्रेन लेकर के पूरे भारत की यात्रा में गए, तो गंगा में तो इतना नहीं हो सकता है, किंतु ये गोदावरी है और नीचे कावेरी है, तो इनका जल तो इतना शीतल नहीं, वेग भी नहीं, तो ये लोग पानी में रहते थे और संस्कृत में शास्त्र चर्चा घंटों तक करते रहते थे। स्वामी काशिकानंद जी महाराज और हमारे महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज घंटों तक, और बाहर किनारे पर बैठे बैठे लोग देख रहे कि महात्मा लोग बाहर आए, तब तो ट्रेन चले। तो ये देहातीत अवस्था है। तो क्या कहा कि हमारे जीवन की अवस्था जो है योगारूढ़ तस्यैव शमः, ये जो शम का कारण मुच्यते, तो शम है मन का शमन है, मन का शमन है। इंद्रियार्थी इंद्रिय बाद में आती है, पहले मन आता है। तो मन जो इंद्रियों से मन है, मन से इंद्रिय है। ये देह को क्या कहा कि देह इंद्रियाणि हया ना हो, इंद्रियां तो घोड़े हैं, शरीर रथम एव च शरीर रथ है, बुद्धि तो सारथिम विद्धि, बुद्धि तो सारथी है, और मनः प्रग्रह एव च, मन तो लगाम है, लगाम रहे रहे तो कोई उपयोग नहीं जब तक घोड़े ना हो। रथ का नहीं होना भी चलेगा, घोड़ों पर यात्रा कर सकते हैं, किंतु घोड़े तो मुख्य हैं, किंतु लगाम जो है ये तो उससे तो गुजारा होता है कि उनसे इंद्रियों को संयम करने के लिए। तो पूरी जो हमारी जीवन की विधि है, तो विचार में, भाव में और वासना में, तीनों जगह में ये विभाजित की जा सकती है। तो एक जो विचार जो है वो विचार में, कुछ लोग विचार में जीवन यापन करते हैं, कुछ लोगों का जीवन यापन है वो तो विचार में है। तो विचार में जो जीते हैं वो लोग बुद्धिमान है, वो बुद्धि में जीवन यापन करते हैं, उनके पास तर्क भी है, उनके पास योग्य अयोग्य की भावना है, श्रेय अप्रेय को भी देखते हैं, योग्य अयोग्य को भी देख ले हैं, ठंडा गर्म है, रुचि अरुचि कर ले, विचार में रहते तो हर चीज को। वृत्ति में जो जीते हैं, वृत्ति वाले हैं वो तो वासना में। वृत्तियां कैसी आपकी? कल समाचार एक आ गया कि 18 साल की आयु में ये पुरुष और स्त्री, युवक और युवती परस्पर उनकी सम्मति हो तो शरीर का सुख भोग कर सकते हैं। तुम्हारे पास में एक सज्जन बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि आपकी आयु क्या है? 26। तो हमने कहा आपके तो 8 साल बर्बाद हो गए। तो वो कहते रहे, बड़े गंभीर बातें देखे, कहते रहे महाराज जी अगर इन चीजों में रुचि होती थी तो कब से ही हम भाग गए होते थे। मैंने इनकी वृत्ति उनमें नहीं है, कामना में नहीं है, वासना में नहीं है, देह में नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की सोच ही अलग है। जब सोच अलग हो जाएगी, विचार अलग हो जाएगा, तो फिर वृत्तियां भी भिन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब तक इंद्रियों में मन है तो फिर शरीर है वो इंद्रियों के चलाने से ही चलता है। शरीर तो स्वतंत्र नहीं है इंद्रियों के द्वारा। आंख ने देखा फूल, पांव को कहा जाओ, हाथ को कहा तोड़ो, नाक से कहा सूंघो, मुंह से कहो हाय कितना सुंदर है, तो इन तमाम को कौन करता है? इंद्रियां तो करती हैं। तो इंद्रियों के बिना तो गुजारा नहीं है हमारा। तो क्या कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो तो विचार में जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग वृत्तियों में जीवन यापन। वृत्ति क्या होती है? जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, पुराने जो ख्याल, पुराने विचार, पुराने संस्कार जो जमा रहते हैं उसका नाम है मल। ये कान में ऐसा करते हो कि नहीं? ऐसा कान में करके फिर यहां से निकाल देते हैं, ऐसा करके वो मल है जमा हुआ। नाक से निकालते हैं, वो मल है जमा हुआ। हाँ, इनके बीच में से निकालते, यहाँ के पीछे से निकालते, ये तमाम मल है। तो मल जो है वो हमारे पुराने संस्कार, सद असत, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, जो पहले हमने भोग भोगे हैं, जिनकी वासनाएं सुसुप्त अवस्था में चित्त में पड़ी हुई हैं, वही चित्त में पड़ी हुई सुसुप्त वासनाएं हमारे जीवन का मल है। यही मल हमारे लिए विक्षेप करता है। क्या मल है? आसक्ति। कौन सी आसक्ति? कुछ खाने की आसक्ति, कुछ पीने की आसक्ति, कुछ सोने की आसक्ति, कुछ देखने की आसक्ति, कुछ स्पर्श करने की आसक्ति, कुछ कुछ आसक्तियां होती है जिसमें मन बहक जाता है। अब ये जो पुराने, अभी हमने भेलखाना छोड़ दिया, हमने चौपाटी जाना बंद कर दिया, अभी हमने आइसक्रीम खाना बंद कर दिया, हमने चीनी खाना बंद कर दिया, अभी हमने ये श्रृंगार करना बंद कर दिया, अभी हमने साबुन लगाना बंद कर दिया, तो ये जो है पहले करते थे वो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, तो ये तमाम तो विक्षेप है। क्या किया? अब कर दिया था तो कर दिया था, क्यों पकड़ के रखते हो? ये पकड़ के रखना है, वह भी विक्षेप है, जो मल पहले का जमा है। यही हमारे और आत्म शांति के बीच में आवरण हो जाता है। तो तीसरी प्रक्रिया क्या है? पहला तो विचार, दूसरा वृत्ति। वृत्ति की वजह से ही वासनाएं होती हैं, वृत्ति की वजह से ही वासनाएं होती हैं। तो हमारे पास में क्या है कि एक इंसान है, वो विचार में जीवन यापन करता है, वृत्ति में जीने वाला वासनाओं में जीता है, और तीसरा भाव में जीता है, भावनाओं में जीता है। ये भावनाओं में जीने वाला है वो उचित है, उसको कोई भी केयर नहीं है, उसको वो आइंस्टाइन के माफिक देह हूं, समय हो गया, बंधन ही नहीं है, वो अपनी अवस्था में रहता है, वो भाव में है। वो क्या है? वो देह से परे हो जाता है, वो इंद्रियों से परे हो जाता है, वो मन से परे हो जाता है, वो एक ऊंचे भाव में, एक समाधि में। तो तीनों हमारी अवस्था है। तो ये हमको क्या कहते हैं? देखिए, बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, 99% लोग जो हैं वो तो विचार में ही जीवन यापन करते हैं, 99%। अब 1% को डिवाइड करना पड़ेगा आधा आधा, कि जो वृत्तियों में है और नहीं तो भाव में है। तो ये क्या कहते कि दोनों तीनों के बीच में, 99 को तो छोड़ ही दो, वो तो गांव का कूड़ा है, जो 1% जो है उसको डिवाइड किया है, उनके बीच में एक बहुत पतली रेखा है, जिसका चिंतन हमने कल किया, मध्यस्थ होना, संतुलित होना। जैसे तराजू है, हाँ, ये हमारे नामदेव हैं, तुकाराम हैं, उन्होंने मांस खाने के लिए किसी से नहीं कहा, किंतु उन्होंने प्रशंसा की है, हाँ, ये बिकुला गे मांस, वो किसके लिए? वो जो मांस बिक्री कर रहा है, किंतु वो डंडी को देखता है, हाँ, तो ज्ञानदेव तुकाराम ने उसकी प्रशंसा क्या की है कि वो मांस को नहीं बिक्री कर रहा है, अपने जीवन के तराजू को संतुलित रखता है, तो उस दृष्टि से उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो ये हमारा जो न विचार में जीते, न वासना में जीते, न भावना में जीते, तो जो जो लोग वस्तुतः जो लोग भावना में जीते हैं, उनके लिए कोई गणित लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयोगशाला भी नहीं चाहिए, कोई पहेली नहीं हद करनी है, कोई दर्शन शास्त्र भी नहीं चाहिए, कोई सिद्धांत भी नहीं चाहिए, उनको कोई राज्य बनाना नहीं है, कोई भवन बनाना नहीं है, क्योंकि वो भाव में है, प्रेम में है। उमर खयाम का नाम सुने होंगे, ये उमर खयाम में क्या बोलते हैं? सुनो भाई, एक छायादार पेड़ हो और मेरे हाथ में एक कविता की किताब हो, बस इतना हो जाए तो हम जीवन का गुजारा कर लेंगे। फिर बोलते हैं, पेड़ ना भी हो तब भी चलेगा, कविता की किताब तो हो, उसी से प्रेम का गीत गा लेंगे। फिर कहते हैं, किताब ना भी हो, एक अंधेरी रात हो, फिर बोलते हैं, चांदनी की रात नहीं चाहिए ना, अंधेरी रात हो, तारों को ही देख लेंगे, उससे भी गुजारा हो जाएगा। जो कुदरत के साथ रहता है वो वस्तुतः अपने आत्मा के साथ रहता है, हमारा जीवन है बिन कुदरती हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है। अपने आप को सोच लो, अपने आप को टपा थोड़ा देख लो। ये पहले सवेरे नाश्ता क्या करते थे थोड़ा देखो, 25 साल पहले जाओ, थोड़ा 50 साल पहले जाओ, क्या करते थे? रातना चोपड़ा वध्या आता ते सवारे खाता आता, बाजरा नो रोटलो खिचड़ी ने कढ़ी रोज रात्रे थतु होतु, वो बाजरे की रोटी सवेरे दही के साथ चूरी करके खा लेते थे। फिर भी कोई बच्चे चटपटा खाना चाहे तो रात की रोटी को थोड़ा मसाला लगा करके थोड़े करके रोटली नो चेवड़ो, हाँ रोटी का चेवड़ा, तो ये गुजारा होता था। अभी क्या है, हमको ब्रेड चाहिए, अभी ब्रेड का गुजारा नहीं है, उसके ऊपर में बटर चाहिए, उसके ऊपर में चीज चाहिए, लेटस चाहिए, चटनी चाहिए, इज नो एंड ऑफ चाहिए 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 चाहिए। चाहिए कहां से आया? इंद्रिय से आया ना, जीव से आया है। हाँ जीव से आया है। जो सीधा सादा खाना है उससे गुजारा नहीं चलता है। कभी भी 24 घंटा 365 दिन कहीं भी आपको क्विक ड्रिंक क्या मिल सकता है बोलो? पानी, शुद्ध पानी, छुट्टी करो कुछ नहीं चाहिए, अपना मटका खोला, अपने मटके में जो पानी रखा है, मैं कहीं जाता हूं तो मेरे थर्मोस में वो मटके से पानी भर के देते, वो मटका खोला है, वो शुद्ध 24 घंटा जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की आदि व्याधि उपाधि उत्पन्न नहीं करेगा, गुणकारक है। दो ग्लास के बदले में 3 पिलो कोई चिंता नहीं, किंतु कोको कोला पियो, कोशिश करो, एक मैगी का पैकेट, एक समोसा, एक ग्लास कोको कोला दिन में 3 बार किसी बच्चे को दो, 6 महीने के बाद में उसके लीवर में एब्सेस हो जाएगा। 1000 में से 4 बच्चे जस लोग जाएंगे, उसमें से एक ही बचेगा। ये क्या है? जीव की वजह से है। तो जो उमर खयाम ने बहुत सुंदर बात की, कहते कि जीवन में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाओं की वजह क्या है? शम नहीं है। शम माने मन का शमन नहीं है, मन की ये चाहिए वो चाहिए, मन की भाग दौड़ जो विषयों में है। ये बहुत सुंदर बात कही है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्गे चलाते चलो, देखो इंद्रियों के ये न घोड़े भागे, इनको संयम नियम के कोड़े लगे। इंद्रियों के घोड़े भागते हैं तो इनको संयम चाहिए, उनको नियम चाहिए। क्या संयम है क्या नियम है? तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है? हमारी जो बीमारियां होती उनकी वजह क्या है? हम यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, हजारों जो बच्चे रहते हैं, युवक युवतियां रहते, तो हमको कहते हैं ये कृपा करके आप लोग ये फास्ट फूड खाना बंद करो, रक्तदान शिविर रक्तदान ये हमारा पेशा नहीं है, हमारा हवस है। कहीं पर भी गए तो हम जहां जहां ठिकाने ठिकाने रक्तदान शिविर करते रहते हैं। विदार मियां जी ने कहा कि महाराज जी आप आइए हमारे साथ में पिलानी आइए। हमने कहा ठीक बात है, आने के समय एक दिन जयपुर रुक जाएंगे, वापसी में एक दो रुकेंगे। क्यों? यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में जाकर के हर साल जाकर के 2-3 कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 1000-1200 बच्चे रक्तदान कर देंगे। अभी तो उनको पता हो गया है बार बार जाने से, किंतु ये सब जगह में नहीं होता है। 200 बच्चे जमा हो जाएंगे, प्रेरणा प्राप्त करके हम रक्तदान करेंगे, किंतु उसमें से 50-60-70 फेल हो जाएंगे। उनकी इच्छा है कि हम नहीं ले सकते, क्यों? वजन ही ठीक नहीं है लड़कियों का, वजन अगर ठीक है तो हेमोग्लोबिन ठीक नहीं है, 10 भी नहीं। क्यों? ये फास्ट फूड खाते हैं, ये पिज्जा, ये पास्ता, और क्या है, नूडल्स, मैगी, ये इटालियन, स्पैनिश, ये मैक्सिकन, ये ही खाते हैं। तो ये क्या है? केवल जीव का संतोष है, शरीर का नहीं है। तो कहना क्या है तात्पर्य आपको? अपने जीवन की विधि के नायक गायक आप है। बहुत स्पष्ट करके कहा है कि बुद्ध ने भी कहा है, इस प्रक्रिया को नाम दिया है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक वृत्ति का है। सम्यक, ये सम्यक शब्द महावीर के द्वारा कॉइन किया गया है, सम्यक ज्ञान, भगवान महावीर ने इसको कॉइन किया है, बुद्ध ने भी इसका उपयोग किया है। सम्यक वृत्ति, हमारी वृत्ति संतुलित, वो ऐसे दायां बायां डावां डोल नहीं, स्थिर हो, हमारे जीवन की गति विधि। तो एक जब वृत्ति हो जाएगी सम्यक तो फिर हमारे प्रेम घृणा क्रोध राग इधर नहीं रहेंगे, क्यों संतुलित है हम। प्रेम करने के साथ में एकदम मन में जागृति आएगी कि प्रेम किया तो पीछे घृणा होने ही वाली है, राग किया तो पीछे द्वेष होने ही वाला है, इट्स अ वेरी नेचुरल। तो एकाग्र स्मृति उपलब्ध हो जानी बात, यह प्रेम है नहीं है, यह क्रोध है नहीं है, क्योंकि क्रोध करने के साथ में पीछे पीछे पश्चाताप भी खराब नजर आता है कि मैंने क्रोध किया। कर्म कह रहे थे ना कि पहले तो कह देते अरे भाई मेरा क्या करूं, मैं बोल देती हूं, मैं लगता है ना बोलू ना बोलू, हाय राम मेरे को नियंत्रण कंट्रोल नहीं मेरे को, फिर बड़ा बुरा लगता है मैंने क्यों बोला। तो पहले क्यों कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जागृति नहीं है। कहीं पर भी आदमी लघु शंका नहीं करता है, जागृति है। कहीं पर भी आदमी बैठकर के शौच त्याग नहीं करता है, जागृति है। तो कहीं पर भी क्रोध कैसे कर सकता है, क्रोध इस क्या है, इज एन काइंड ऑफ एन वॉमिटिंग। आप अपने भीतर का गुस्सा बाहर उल्टी करके निकाल रहे हो। हाँ कोई कोई तो कर सकता है, मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे सीनियर बुश, जो बुश है वो जापान गए थे अपनी कार को बेचने के लिए, मैं भी रहा हूं दिनों में वहां पर, वो कार को बेचने के लिए गए थे, उन्होंने कहा तुम्हारी कार यहां नहीं चलेगी, तुम्हारी कारें चौड़े हैं, तुम्हारी कारें लंबी है, हमारे यहां जापान के रास्ते छोटे हैं, जिग जैग है, इसमें ये कार नहीं चलेगी। राजा से मिले, रानी से मिले, कुंवरी से मिले, राजकुमार से मिले, मंत्रियों से मिले, फिर आखिर में सबको इकट्ठा करके वो बोले बैडमिंटन खेलने गए, कहीं से भी वो लोग हां कह दे। हाँ फिर क्या किया, अपने तरफ से जाने के समय में अपने तरफ से डिनर दे दिया उसको, बुलाओ आओ, और डाइनिंग टेबल के ऊपर में मिस्टर प्रेसिडेंट बुश ने करके उल्टी कर दी, इतनी बुरी तरह से उल्टी कर दी। तो वहां उनके तो डॉक्टर थे ही थे, उन्होंने कहा कि जापान वालों ने कहा हम एक सीनियर लामा को बुलाएंगे जो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, नाड़ी देख के बताएंगे इनकी क्या बीमारी है। वो 10 मिनट तक बोले इनके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी, फिर उल्टी क्यों किया, बोले नाटक किया है, फोर्स करके किया है, सब थू थू कर गई है, तो अगली बार जीत ही नहीं सकता है, ये कितना बीभत्स कार्य किया है। तो जो क्रोध है वो भी वमन करना है, वो भी उल्टी करना है। तो जब हम कहां पर भी बैठ के उल्टी नहीं कर सकते, उसने किया था वो ड्रामा अलग था, किंतु हम कहीं पर नहीं कर सकते तो क्रोध भी नहीं कर सकते, संयम हो जाएगा। कितना भी करके हमको मलमूत्र का त्याग करना है तो बाथरूम ढूंढ ही लेंगे, तो क्रोध करने के लिए भी कमरा ढूंढो, बंद करो फिर क्रोध करो। हाँ तो जाकर के ही अपने सिर में 2000 मार लो, बुरी बात नहीं है, और ज्यादा गुस्सा है तो एक बाल्टी सिर में पानी डाल दो तब भी बुरा नहीं है, दूसरे के ऊपर तो ना करो, जागृति हो जाएगी। क्या क्या है, सम्यक स्मृति, इस बात का होश हो जाए कि ये जो मैं कर रहा हूं उचित है कि अनुचित है, योग्य है कि अयोग्य है। ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हमारे भाव, पारदर्शिता हो जाएगी, एबल टू सी कि व्हाट्स गोइंग टू रिजल्ट, क्या है इसका परिणाम क्या होगा। किंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं पत्थर के माफिक, उनको कोई पता नहीं, करते ही चले जाते हैं। ये भाव बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत पारदर्शी है, कांच की तरह, वासनाएं तो पत्थर की तरह है, इसलिए बोलते हैं हमने कामांध कहते हैं, कामांध पुरुष होते हैं, वासना में अंध हो गया पुरुष। तो ये दुर्योधन को ये राजकुमार है, असाधारण नहीं है, कुरुवंश का राजकुमार है, फिर ये चीरहरण क्यों कराता है, क्योंकि उसको सत्ता की वासना थी, मदांध हो गया था मद में। और सूर्य का पुत्र जिसको हम कहते हैं कर्ण, सूर्य का पुत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि के प्रज्ञा के दाता, हमें प्रज्ञा प्रदान करो, बुद्धि के दाता, प्रज्ञा के दाता, सद्विचारों के दाता सूर्य, उनका पुत्र ने, उसका कोई मतलब नहीं था। द्रौपदी है वो पांडवों की पत्नी हुई तो क्या हुआ, राजरानी थी वो, एक सम्माननीय स्त्री है, उसको कर्ण ने वेश्या कहा। दुर्योधन तो कहता है उसको आओ यहां मेरी जांग पर बैठाओ, दुर्योधन तो दुर्योधन है, वो कह दे कर्ण क्यों कहे, दुर्योधन तो अंधे का बेटा है जो न बाहर देखता है न अंदर देखता है, जिसके तमाम वृत्तियां के दरवाजे बंद हो गए, भाव के दरवाजे बंद हो गए, विचार के दरवाजे बंद हो गए, वो तो बोल सकता है क्योंकि वो अंधे का बेटा है। कर्ण क्यों बोले, कर्ण को बोलने की आवश्यकता क्या है, कर्ण की कोई योग्यता ही नहीं है। अब पूरे महाभारत को आप टटोल करके देखिए, जब विराट का युद्ध हुआ तो कर्ण वहां था कि नहीं था, कर्ण था तो अगर उसके पास में शक्ति थी, ऊर्जा थी, चेतना थी विध्वंस करने की, तो अर्जुन को हरा सकता था। कर्ण के साथ में वो भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे, शकुनी थे, तमाम पूरी कौरव सेना थी, फिर भी जो हमारा कर्ण है हार गया था। अच्छा ये तो हार गया एक बार, दूसरी बार बताओ। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव लोग वन में रहते हैं, वन में रहते पांडवों को थोड़ा टीज करना चाहिए, थोड़ा ए, क्या बात है, कुछ तमाशा करना चाहिए, उनका मजाक उड़ाना चाहिए, उनका विनोद करके उनके अहंकार को और आग लगानी चाहिए। इसलिए दुर्योधन वहां जंगल में आकर के रहा, कर्ण को भी साथ ले गया, और क्या किया उन्होंने, वन के वनवासी लोग जो हैं उनके राजा की बेटी की छेड़ती की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो दुर्व्यवहार किया तो वो वनवासी भीलों ने दुर्योधन को पकड़ के पीटा, मार करके ले गया। उस समय कर्ण ने क्या किया, थोड़ा मैं अपना गांडीव लेके आता हूं, अपना गांडीव क्या, अपना धनुष लेके आता हूं। वो अपने कमरे में आया, मुंह धोया, धनुष लेके आया। तब तक समाचार युधिष्ठिर के पास पहुंच गए थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को, भीम को कहा, जाओ दुर्योधन हमारा भाई है, उसको छुड़ाओ। तो वो लोग छुड़ा के लाए। जब छुड़ा के लाए तब तक कर्ण नहीं पहुंचा था, तो कर्ण की योग्यता क्या ठहरी। तुम बार बार कहते हो मेरे प्यारों कि कर्ण दानी है, दानी, ठोस दानी है कर्ण। कर्ण के चरित्र को देखते चले जाओ, घृणा हो जाएगी, ये अपने आप को सूर्य पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं है। वास्तविकता में वो दासी पुत्र रहा, क्योंकि उसने दास का ही दूध पिया था। जन्म के साथ में तो कुंती ने उसने छोड़ दिया, तो दास ही के दूध से उसका पोषण हुआ है, तो दासत्व उसमें था, क्षत्रियत्व नहीं था। क्षात्राणी का ओजस, तेजस, प्राज्ञ, चेतना, ऊर्जा, क्षमता, दिव्यता, भव्यता, ऑल वॉज जीरो। क्या बात है, कर्ण को क्यों गौरव करते है? अगर वो दानी है तो क्या दान है, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए है। वो जो दान है वो प्रशंसा के लिए है, वो दान है अपने आप की महत्ता के प्रदर्शन के लिए, वो थोड़ा दान होता है ना। किसने दान किया, अरे दान कौन करता है, अरे हमारे गुजरात में चले आओ, हमारे सौराष्ट्र में चले आओ, जलाराम बापा के समान कोई दानी न हुआ है न हो सकता है। 225 साल बीत गए, उस संस्था में कहीं दान पात्र नहीं है। अभी 25 साल से वो दान पात्र को उठा करके रख दिया गया, भारत के तमाम अखबारों में डाल दिया, कृपा करके हमें यहां पैसा नहीं भेजना, अनाज नहीं भेजना, इतना पर्याप्त है। अरे और एक और हमारा तिरुपति है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। जलाराम बाबा तो सादा धोती पहनने वाला गंवार गांव का आदमी, जलाराम बाबा सिर में पगड़ी बांधने वाला आदमी, हाथ में डंडा लेने वाला आदमी, वहां बोर्ड लगाया जाता है कि कोई हमको दान नहीं बेचना, और जिसके ऊपर में 18 करोड़ का हीरा का मुकुट है, उन्होंने कल परसों क्या निर्णय लिया है कि महिलाएं आधे आधा बाल कटवाती है, अगर पूरी बाल कटवा लेंगी इनको 3 लड्डू प्रसाद में ज्यादा दिया जाएगा। व्हाट ए शेमफुल मैटर। नहीं लगता है कि कुछ हमारी अधोपति हो रही है। उस महातीर्थ के जिसको हम भू वैकुंठ कहते हैं, उस तिरुपति बालाजी के मैनेजिंग ट्रस्टियों ने निर्णय लिया है कि महिलाएं, क्योंकि वहां पर बाल का दान देना है उसको गौरव माना जाता है आंध्र प्रदेश में, तो लड़का लड़की है वो सोचते हैं कि अगर मेरा इस लड़की से शादी हो जाए, मेरे लड़के से, तो हम उसी दिन अपने दोनों के शरीर संपर्क के पहले अपने बाल दान करेंगे। तो शादी सुबह होती है, दोपहर को चले जाते हैं तिरुपति और शाम को बाल कटा लेते हैं वो लोग, बाल दोनों मियां बीवी दोनों मुंडन करा लेते। साधारण महिला भी आधे बाल तो कटवा ही लेती है, तो ये आधे बाल कटवा लेना, तिरुपति बालाजी ने कहा पूरा बाल कटवा लो, हम 3 लड्डू प्रसाद में और देंगे आपको। व्हाट ए शेमफुल मैटर। क्या नहीं लगता है कि हम न मन में है, न इंद्रिय में है, न भाव में है, न विचार में है, हमारी जो जो वस्तुतः सात्विकता है उसके ऊपर में बिल्कुल ढोल ढपोल करके हमने रख दिया है। ठीक है, अपने आप को टटोलना है, ये सम्यक शब्द है, उसको जानना पड़ेगा। सम्यक शब्द, ये लंदन है ना, लंदन, उसमें मेन लंदन से 3.5 घंटे की ड्राइव में ब्रिस्टल है, वो ब्रिस्टल जहां है वहां से कोई 4 घंटे की ड्राइव में एक स्कंदवेल नाम का जगह है, उस स्कंदवेल में जाओ, पहले 4 रास्ते होते हैं, वहां से 3 हो जाते, फिर 2 हो जाते, फिर 1, फिर बाद में छोटी गली जंगल में जाती है, छोटी सी एक ही कार जा सकती है, सामने से कोई आएगा तो नहीं चल सकते। तो वहां स्कंदवेल में नीचे पर पहाड़ एक है, पहाड़ में एक देवी का मंदिर है, आश्चर्य वहां सारे ही गोरे लोग हैं, उनके गुरुजी दक्षिण भारत के मैंने कभी देखे नहीं, उनको मैं जब जाता हूं एक शॉल लेकर के जाता हूं, कुछ अगरबत्ती लेके जाता हूं, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, सुना है कि वो दक्षिण भारत के, बाकी सारे गोरे लोग हैं, आश्चर्य है। वो बाहर बोर्ड लगा है, जो महिलाएं रजस्वला 4 दिन में हुई हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, 12 साल से छोटे बच्चे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जिन्होंने पिछले 4 दिन में मद्यपान किया वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जिन्होंने पिछले 4 दिन में मांसाहार किया वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बाहर हॉल में बैठा देते हैं, वहां क्लोज सर्किट टीवी है, उसको देखो, फिर जब द्वार खुलता है तो वहां पहले वृद्ध महिलाओं को, फिर बाद में वृद्ध पुरुषों को, बाद में लोगों को, बाद में जवान लोगों को अंदर छोड़ते हैं। 3 घंटे तक इनकी पूजा चलती है, ये गोरे मंत्र पढ़ना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं गणेश से, बाद में देवी, बाद में शिव, बाद में नारायण, बाद में राम, बाद में कृष्ण, बाद में वेंकटेश, उसके बाद में जगन्नाथ, उसके बाद में हनुमान, उसके बाद में दत्तात्रेय, और सबसे पीछे कार्तिकेय, और उसके बाद में एक धीरे से पर्दा खुलेगा, हाँ तो देवी है उसकी आरती करते हैं, तब तक ये तमाम देवी देवताओं का अभिषेक होता है, और ये इतने मंत्र इतने कीर्तन किए चले जाते हैं। इस मंदिर के बीच में भी 3.5 फीट की मूर्ति जलाराम बापा की है। मैंने बोला अरे जलिया तू इधर भी आके बैठा है और यहां पर भी आप चले जाओ, कोई दान पात्र नहीं है ना, गुजराती दाल गोड़ आमली वाली क्या मल है, चावल भी है, सब्जी भी है, फल भी टोकरी भर के है, अचार भी है, सलाद भी है, रोटी नहीं है, ब्रेड है, ब्रेड के बदले में खा लो, और उसको सब लोग गरम गरम दाल चावल सब्जी रोटी खा के जा, वो जला उधर भी बैठ करके दान कर रहा है। हम क्या करने को, कर्ण का कोई मंदिर है क्या, युधिष्ठिर का कोई मंदिर है क्या, अरे जलाराम बापा का मंदिर कहां नहीं है, कौन से देश में नहीं, क्यों है, वस्तुतः उन्होंने जो कार्य किया उसमें इनकी आसक्ति नहीं थी, न देह की आसक्ति न तो इंद्रिय की आसक्ति। तो सिद्धांत और गणित जो है वो जिसमें हमने यापन करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें कोई दंभ ना हो, उसमें कोई छल ना हो, उसमें कोई कपट ना हो, किंतु क्या हो, विचारों के प्रति सजगता हो, भाव के प्रति स्मृति हो, वासना के प्रति समत्व हो, और ये परिणाम क्या होगा, परिणाम तो एक ही होगा, परिणाम भिन्न भिन्न नहीं है, ये विचारों में सजगता रहे, भावों में स्मृति रहे, कामना में वासना में समत्व रहे, तो उसमें भेद भले ही हो किंतु परिणाम तो एक ही होगा। गंगा जी गए क्या आप लोग हरिद्वार में, अभी ऋषिकेश है, हम जहां बैठे हो तो शिवानंद आश्रम है, आप लोग बैठे हो परमार्थ निकेतन गीता भवन है, बीच में तो ये गंगा जी है। अगर हम यहां से कूदते हैं, वो कैलाश आश्रम का घाट है, ये शिवानंद आश्रम का घाट है, ये तपोवन का घाट है, वो तो सामने गीता भवन का घाट है, ये परमार्थ निकेतन का घाट है, और ये स्वर्गाश्रम का घाट है, ये महर्षि महेश्वर के घाट, कितने सारे घाट सामने हैं, कितने सारे घाट यहां है, किसी भी घाट से कूदा जाए तब कहां जाएंगे बोलो, अलग अलग घाटों की गंगा अलग अलग है क्या, नहीं है, कोई भी घाट पकड़ लो गंगा तो एक ही है। तो आप यदि विचारों से चलते हैं या भाव से चलते हैं, या तो आप स्मृति से चलते हैं या तो आप वासनाओं से चलते हैं, आपकी जो अंततो गत्वा जो लक्ष्य है, अवगाहन है, वो तो उसी गंगा में है। कल रात यहाँ ये जैन मतावलंबी लोगों की एक सभा हुई, ऐसा मुझे आदरणीय श्री मधु बाबू ने कहा। मैं कहा कुर्सियां क्यों उठाई, बोले कि जैनियों की सभा होती है, बहुत भीड़ लगती है, इसलिए आधी कुर्सी निकाल देते। अच्छी बात है। सवेरे भी देखा वहां एक सफेद कपड़ा भी क्यों लगाए, जैनियों की सभा हुई। ये जैन लोगों ने अपने भगवान को अच्छा नाम दिया, तीर्थंकर। क्या नाम दिया है? तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? घाट। तीर्थंकर का मतलब ही होता है घाट। जिस घाट में आप स्नान करो वो तीर्थ कहलाता है। वो तीर्थ है तब तो वही घाट तीर्थ कहलाएगा, तीर्थ ना हो तो घाट तीर्थ नहीं कहलाएगा, खाली पत्थर रह जाएगा। तो भगवान महावीर हैं, उनका बड़ा प्रचार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी घाट से चले जाओ तो आपको तो वही गंगा में जाना है। उन्होंने ठोक पीट करके मेरा ही घाट ठीक ऐसा कभी नहीं कहा ना। अहिंसा परमो धम्म कह दिया उन्होंने कि भाई अहिंसा ही परम धर्म है, जीवो जीवस्य जीवनम भी कह दिया, किंतु मैं जो कहता हूं वही सत्य है ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा इसलिए उनको लोगों ने ज्यादा ये प्रचार क्यों है स्वाध्यायी लोगों का। स्वाध्यायी जो है उनको बोलते हैं स्वाध्यायी, स्वाध्यायी का ही भोजन करेंगे, स्वाध्यायी बिन स्वाध्यायी का पानी भी नहीं पिएंगे, और स्वाध्यायी अपनी लड़की स्वाध्यायी को भी देंगे, और स्वाध्यायी दूसरे किसी के स्वाध्याय में जाएंगे भी नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे मजहब हैं जिन लोगों ने ऐसे कर रखा है, तो फिर वो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते चले गए। हाँ, जिसको हमने क्या बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन का करते हैं ना, वैसा ही ये भी सब बने हुए हैं। हाँ, काफी सारे ऐसे मजहब हैं। तो ये महावीर ने ऐसे नहीं कहा। महावीर ने कहा भाई कोई भी घाट से आप कूद जाओ, सामने से कूदो, मेरे साथ वाले घाट से मेरे साथ में वही गंगा की धारा में आप जाएंगे। तो घाट छोटे भी हो सकते हैं, घाट बड़े भी हो सकते हैं, गंगा स्वयं एक ही गंगा है। मुश्किल क्या है? हालांकि सभी धर्म कोशिश करते हैं कि जैसे घाट हो वैसे ही धर्म, कि मेरा ही धर्म विशेष हो। जब तक हम अपने इस घाट से, धर्म के घाट से, अस्तित्व की गंगा में जब तक हम ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। गंगा बड़ी है, अस्तित्व की गंगा विराट है, हमें एक छोटे से कोने में एक छोटा सा घाट बना ले, यदि सफल हो जाए, छलांग लगा सके तो बहुत भी अच्छा है। क्या होगा? यही परम तत्व की धारा में बहेंगे। कौन है? या तो भाव वाली धारा है, विचार की धारा है, वासना की धारा है। वासना आवश्यक नहीं कि इंद्रियों की वासना हो, वासना आवश्यक नहीं कि मन की तृप्ति की वासना हो, वासना प्रभु प्रेम की भी हो सकती है, वासना सेवा के लिए भी हो सकती है, वासना परोपकार की भी हो सकती है, वासना गुरु के शरणागति की भी हो सकती है। गुरु शरणानंद जी महाराज से एक बार मिलने का हुआ, शिष्य मां आनंदमयी मां के आश्रम में, वो मां के मंदिर से बाहर आ रहे थे, हम अपना प्रवचन करके बाहर आए थे, चौक में रहे, हमारे साथ में सज्जन रहे। मैंने पूछा ये महात्मा कौन है? अरे 10 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी गुरु शरणानंद जी, वो मैंने बहुत नाम सुना हूं, रमेश भाई ओझा और हमारा मुरारी बापू और चिदानंद मुनि, उनके चारों ओर घूमते रहते, मेरे को पता है। तो मैंने दंडवत प्रणाम किया, मेरे को पास बुलाए, ऐसे कहा ऐसे करने का मतलब होता है कौन हो, कहां से आए हो। हमने ही बोले हमारे साथ सज्जन, उन्होंने कहा शिवानंद आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी चिदानंद जी महाराज के शिष्य हैं, और मेरे को गले से लगाया। अरे आपके गुरुदेव के आंगन में झाड़ू लगा लगा के ही ये गुरु शरण बना है। गुरु शरण बना कैसे? उस गुरु की शरण से बना। देखिए इतनी ऊंची अवस्था के बाद में भी अपने आप की जो विनम्रता है, अपने आप की जो सरलता है, तो उस सरलता को भाव की भाव व्यंजना अगर हम कर जाए तो योगारूढ़ अवश्य हो सकते हैं। आइए छोटे श्लोक को पढ़ते हैं। फिरते पड़ते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते कर्म स्वनुसज्ज सर्वसंकल्प सन्यासी स्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आ सकती हो न कर्मों में आ सकती हो उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष ध्यान दे न इंद्रियों में आ सकती है न तो कर्मों में आ सकती है सर्व संकल्प का त्यागी है तब योगारूढ़ है। बिल्कुल सीधी बात है किस में आ सकती नहीं है इंद्रियों में दूसरी कर्मों में त्याग किसका है सर्व संकल्प का प्राप्ति क्या है योगारूढ़। अभी जब बिल्कुल सीधी बात है न इंद्रियों में आ सकती है जिसकी न कर्मों में ऐसे क्षण में यहां दो आसक्तियां शेष नहीं है दो नहीं है एक तो इंद्रियों में भी नहीं है कर्म में नहीं है तो वो पुरुष योगारूढ़ हो जाएगा। दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा दोनों संयुक्त है इंद्रियों में आसक्ति हो तो कर्मों में आसक्ति होती है और इंद्रियों में ही आसक्ति नहीं हो तो कर्मों में आसक्ति का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि आंख को देखने की रुचि है तो मैं देख रहा हूं मेरे साथ में बोलिए सी बट लुक नॉट सी बट लुक नॉट टच बट फील नॉट टच बट फील नॉट टेस्ट बट रियलिश नॉट टेस्ट बट रियलिश नॉट हियर बट लिसन नॉट। ओ हमारे हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी वो कहते हैं महाराज जी हमने इसका हिंदी बना दिया बोलिए खाओ पियो बोलो खाओ पियो छको नहीं खाओ पियो छको छको नहीं बोलो चालो बको नहीं बोलो चालो बको नहीं घूमो फिरो थको नहीं घूमो फिरो थको नहीं देखो भालो तको नहीं तक तको नहीं। कल वो नीचे नहीं ऊपर ऊपर वो हो रहा था रसिया हाँ तो बोले पिचकारी तक तक मारी तो वो ऐसे कर रही थी लड़की तो वो बोला अरे पिचकारी भर भर मारी नहीं है तक तक मारी भरना ये होता है तकना माने तक के देखे देख करके उसी को निशाना बना के मारे हो तकना होता है देखो भालो तको नहीं। ये बहुत सरल शब्द है किंतु महा मुश्किल है टेस्ट बट वाइस नॉट। सब्जियां तीन बनी है अब ज्यादा कौन सी खाते हो बोलो जिसमें नमक तेज नहीं जिसमें मिर्ची तेज नहीं जो ज्यादा स्वाद लगी वो तो खा लेते हो। फरसान तीन बना है भजिया भी है दही भल्ला भी है और खमन ढोकला भी है कौन सा खाते हो जो जीभ को बढ़िया लगेगा वही खाएंगे। तो तात्पर्य है इंद्रिय जन्य व्यापार तो है इंद्रिय जन्य व्यापार से मुक्ति नहीं है और जब इंद्रियां हैं उससे मुक्ति नहीं है तो कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों में अगर आसक्ति छूट जाए तो कर्म की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी क्योंकि बिना इंद्रियों के तो कर्म होता नहीं है। अगर आप धन इकट्ठा करें धन बहुत इकट्ठा कर लिया धन भी इकट्ठा करना है कर्म ही होता है। अब पता हो जाए आकस्मिक सरकार बोले कि 500 रुपए की नोट और 1000 रुपए की भारत में 1000 के नोट है कि नहीं हाँ तो मुझको ध्यान नहीं भाई तो क्योंकि मेरे को कोई लिफाफा दिए तो मैंने खोलता ही नहीं और यहां तो सब 10 रुपया ही रखते हैं तो 1000 रुपया मुझको क्या बताए लिफाफा कोई मेरे को दिए तो मैं कभी खोलते ही नहीं है, वो उसको वैसे दे देते। तो अगर सरकार ऐसा तय कर ले कि 24 घंटे के बाद में 1000 रुपए के नोट हैं, तो उसको समाज में वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो सबको आप बैंक को जमा करा दो। अब तो जमा कराने को भीड़ तो हो जाएगी, चिंता नहीं, 24 घंटा वो ले लेंगे, मगर आपने अपने 1000 रुपए यहां नहीं रखे, अपने गांव में कहीं पर किसको पता ना चले, वैसे पूजा के घर में ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे एक मोहरा बना करके रखे। कितना है? 50 करोड़, सब 1000-1000 के नोट। अभी वहां तो आप 24 घंटे में जाके आ सकते नहीं। अब वो 50 करोड़ रुपया है, उसको क्या करोगे बताओ 24 घंटे के बाद में? कोई उपाय है क्या उसका? फिर उसमें आसक्ति होगी क्या? बोलो तो नहीं होगी भाई। हो उसको बेलपूड़ी खाने के लिए ऐसा करके खा सकते हैं, चम्मच बनता है ना कागज का, नारियल खाते हो ना वो छिलके का ही चम्मच बना के, तो उसको यही काम, और कुछ नहीं आ सकता है। बड़ा बड़ा मुश्किल काम है कि अगर हम धन इकट्ठा करते हैं, हमको धन का आकर्षण क्यों है पता है? इस धन से हम कपड़े खरीद सकते हैं, इस धन से मकान खरीद कर सकते हैं, इस धन से हमको दुकान खरीद सकते हैं, धन से बढ़िया पार्टी कर सकते हैं, धन से गुमगाम सकते हैं। मत जब धन का कोई उपयोग नहीं है पता हो जाएगा, फिर आकर्षण कैसे रहेगा? फिर आकर्षण नहीं रहेगा। इसलिए महावीर जैसे व्यक्ति है वो अपने साथ में कोई धन लेके चलते ही नहीं। क्यों? बोलिए बोझ है, क्यों खाली उठा के घूमना है भाई? इसका गहरा कारण है इंद्रियों की तृप्ति के लिए उनका कोई आयोजन नहीं। न महावीर है न बुद्ध है, बड़े बड़े संत त्यागराज हैं। तो त्यागराज इतना बड़ा सुंदर संगीत करते थे, त्यागराज का संगीत तो राजा ने कहा कि महाराज, वो त्यागराज का नियम था कि अपने पास में आने वाले विद्यार्थियों से किसी से पैसा नहीं लेना संगीत सिखाना। वो गली गली में जाकर के राम संकीर्तन करते थे, तो लोग उनके विद्यार्थियों के जो झोलियां होती थी उसमें चावल 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 डाल देते थे, त्यागराज के झोली में भी चावल डालते थे। रोज यही एक घंटा गांव में, आज इस गली में गए कल दूसरी गली में गए। राजा ने कहा महाराज मत करो, मेरे को लज्जा आ रही है, मैं आपके पास में बंदोबस्त करता हूँ सदा व्रत का कि आपके यहाँ से ही सबको खिचड़ी मिलती रहे, तो आपको अपने आप मिल जाएगी, मैं कुछ सोना आपके पास जमा कर दूँ। मेरे को नहीं चाहिए, एक भी सोना नहीं चाहिए। फिर त्यागराज ने एक दिन सोचा कि गांव छोड़ दिया जाए, दूसरे गांव चलो। तो जाने लगे तो बोले कि महाराज जी कम से कम इस गांव से दूसरे गांव की यात्रा जो 3 दिन की है, तो 3 दिन यात्रा के लिए तो आप चावल ले लो, हाँ इतना तो कर सकते हैं। तो बोले कि सबके थैले में थोड़ा थोड़ा चावल डाल दो। तो त्यागराज के थैले में नहीं डाला, एक उनका चेला था उनको थोड़ा आंख मिचोली करके उसके अंदर थोड़े सोना मोहर भी डाल दिए राजा के मंत्री ने, राजा के कहने पर डाल दिए। अब रस्ते में क्या हुआ, वो दस्यु लोग आ गए पत्थर फेंक रहे। त्यागराज ने कहा रुको रुको, हमारे पास कोई धन नहीं है, केवल चावल ही है, आओ पका लेते हैं सब साथ में खाएंगे। तो वो जो चेला था वो घबराने लग गया। त्यागराज बोलते तू क्यों घबरा रहा है? बोलते महाराज ये लोग मेरे को मार देंगे। क्यों मारेंगे? तो थैला तेरा चावल का खाली कर दे और उनको दे दे चावल, हमको इतना चावल थोड़ा चाहिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा है, एक दिन का तो हो जाएगा गुजारा, 2 दिन भोजन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो महाराज मेरे पास में चावल नहीं है, 2 मुट्ठी सोना मोहर भी है, स्वर्ण मुद्राएं भी। स्वर्ण मुद्राएं रहेंगी तो भाई, स्वर्ण मुद्राएं पास में रहे, धन रहे तो ये मुश्किल है, धन ही ना रहे तो क्या मुश्किल। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जब महासमाधि हुई तब तक उन्होंने 310 किताबें लिख ली थी, और खुद लिखी, खुद ही प्रिंट की, खुद ही बाजार में डाली। कैसे डाली? एक किताब को 1000 कॉपी प्रिंट करते थे और 700 किताबें अलग अलग लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटियों में, गवर्नर को, मंत्रियों को प्रसाद बांट देते थे। 1000 में से 700 कॉपियां प्रसाद बन जाती थी, उसके पास कुछ रहता नहीं था। तो जब स्वामी शिवानंद जी महाराज की महासमाधि हुई तो आश्रम के ऊपर में 32-35 हजार रुपए का कर्जा था, इंडिया टुडे ने एक दिन इंटरव्यू किया हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज का कि महाराज आप इतने सरल हैं, इतने निर्लेप हैं, इतने त्यागी हैं, आप में कोई विकार नहीं है, ना आप सत्ता चाहते हैं। तो हमने सुना है कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के समाधि के बाद में आपके यहाँ भी गद्दी के लिए झगड़ा हुआ था, तो आप प्रेसिडेंट बन गए, तो ये पहले आप में ये गुण नहीं थे क्या? सीधा पूछ लिया उसने। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो गुण है वो तो माता पिता के यहाँ जन्म से ही है, गुरु कृपा से ही है। हाँ झगड़ा जरूर हुआ था, झगड़ा तो बहुत बड़ा हुआ था कि गद्दी में कौन बैठे ये नहीं, मैं नहीं बैठूंगा तू बैठ, इसका झगड़ा हुआ था। जो जनरल सेक्रेटरी थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वो गंगा जी में गए दो ट्रस्टियों का हाथ पकड़ के, मैं गंगा में स्नान करता हूँ, हाथ में जल रखे प्रायः संकल्प करता हूँ मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। स्वामी चिदानंद जी महाराज बोले जिसको बनना हो सो बने, मैं तो जंगल चला जाता हूँ, मेरे को कोई रुचि नहीं है। तो झगड़ा तो हुआ किंतु गद्दी में बैठने के लिए नहीं, गद्दी पर नहीं बैठने के लिए। तो ये हमारी जो वृत्तियां हैं, यदा ही नेन्द्रियासु न कर्म समस्त सर्व संकल्प संन्यास, कुछ जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ना हो तो क्या आदमी की अगर आंख, बिल्कुल सीधी बात है बताओ, आपकी आंख है उसकी कीमत क्या? बोला बोलिए, आपको पता ही नहीं क्योंकि आंख देख रही है, आपको तकलीफ नहीं है। जब तक आंख में रेटिना डिटेचमेंट नहीं हो जाए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंख एक फूट जाए, आप नहीं सोचना कि हम स्वामी जी, मेरी एक आंख फूट जाए, चलो दोनों ही आंख फूट जाए, तो किसको तकलीफ है, मुझे है कि नहीं है? अच्छा फिर आंख से देखना ही नहीं है, दाजू नहीं। मान लीजिए आंख है चली गई, कान भी चले गए, मुंह से बोलना बंद हो गया, आंख चली गई, कान से सुनना बंद हो गया, मुंह से बोलना बंद हो गया, हाथ को लकवा मार गया, पांव भी लकड़ गए, अब मुझे बताओ मेरे शरीर की कीमत क्या है? बोलो, ओ कैसे ही मुर्दा पड़ा है। तो ये जो इंद्रियां हैं उनकी अपनी अपनी कीमत तो है, आंख की अपनी कीमत है, कान की अपनी कीमत है, नाक की अपनी कीमत है, जिह्वा की है, आपके शरीर सौंदर्य की है, इसलिए इनकी सबकी कीमत तो है। फिर भी इनका आपका संबंध क्या? आपको जब भूख लगती है तो आप क्या बोलते हैं? मुझे भूख लगी है, क्या बोलते हैं बोलो? मुझे भूख लगी है। किंतु आंख में कुछ छटपट आता है, कुछ मच्छर गिर गया, तो कहां मच्छर गिरा है बोलो, क्या बोलते हो? बोलो कि आंख में कीड़ा गिर गया, आंख में कोई धूल गिर गया, आंख में कोई तिनखा गिर गया, तो किसको कहां गिरा है बोलो? आप में गिरा है कि आंख में गिरा है बोलो? आंख में। और कान में खटर पटर हो रहा है, मेरा कान में बड़ी तकलीफ हो गई, आप में तकलीफ हुई कि कान में हुई? लकवा हाथ को मारा है कि आपको मारा है? तो फिर अपने आपको इंद्रियों के साथ में एक रूप बताते क्यों? ये शीशी माँ आनंदमयी माँ है, उनका दर्शन हमने 1965 से करते रहे, हमें कभी बात ये समझ में नहीं आई जब तक गीता का चिंतन नहीं बढ़ा। माँ हमेशा बोलती थी बाबा ये शरीर जवाब नहीं दे सकता, माँ हमारी इच्छा है कि आप यहाँ पधारे, वो थोड़ा परमानंद से बात करो, ये शरीर जवाब नहीं दे सकता, ये शरीर माने मैं नहीं है, होता हुआ भी मैं है किंतु मैं ये शरीर से अलग हूं, जब तक मैं ये शरीर हूं, आई एम द बॉडी, ये भाग ये मन में विचार रहेगा तब तक आप सर्व संकल्प नहीं कर सकते, तब तक आप इंद्रियों से विमुख नहीं हो सकते, आप आंख नहीं है। मेरा हाथ टूट गया, आप टूटे हो ना, हाथ टूटा है, मेरा चश्मा फूट गया, चश्मा फूटे हो ना, आप फूटे हो, तो चश्मा फूटा है, मैं चश्मा से अलग हूं, मेरी टांग टूटी तो मैं नहीं टूटा हूं, टांग टूटी है तो मैं टांग से अलग हूं, मैं हाथ से अलग हूं, मैं आंख से अलग हूं, मैं कान से अलग हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजस च वायु चिदानंद रूपः शिवोम शिवोम। तो जब हम यदाहीन इंद्रियातेषु न कर्म संसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगा, जब हमारी इंद्रियों में हमारी आसक्ति नहीं रहेगी तो कर्म की आसक्ति भी चली जाएगी। सर्व संकल्प का त्याग कर ले तो योगारूढ़ है। इस विचार को कभी आगे कल बढ़ाएंगे। ओम शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।